नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव, एकल मतदाता सूची और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन का वादा किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से और मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किए गए संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और एकल मतदाता सूची का वादा किया गया है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमन की उपस्थिति में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में भाजपा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की सुविधा को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की बात कही है। संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही गई है और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है। भाजपा ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजा जाएगा। संकल्प पत्र में मौसम नाम से राष्ट्रीय वायुमंडलीय मिशन लॉन्च करने की भी बात कही गई है। पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि पार्टी अशांत क्षेत्रों के मुद्दों के समाधान और चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने का प्रयास जारी रखेगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संकल्प पत्र युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाता है, जो विकसित राष्ट्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं। श्री मोदी ने कहा कि संकल्प पत्र जीवन की गरिमा और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है।
जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटती। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और महंगाई कम करने जैसे मुद्दों पर भी भाजपा का घोषणा पत्र मौन है। इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार और तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां तथा रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी दोपहर बाद मैसूरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे शाम को मैंगलुरू में रोड शो करेंगे। श्री मोदी की जनसभा में मैसूरू, मांड्या, चामराजनगर और हासन लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता तथा नेता भाग लेंगे। दोनों ही कार्यक्रमों में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल सेक्युलर के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। श्री मोदी केरल में चुनाव प्रचार के लिए आज रात कोच्चि पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर बाद नागपुर में पार्टी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विकास ठाकरे के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। वे आज डॉ आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए दीक्षा भूमि भी जाएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह भंडारा जिले के साकोली में महायुति के प्रत्याशी सुनील मेंढे के लिए रैली करेंगे। महाराष्ट्र में इस महीने की 19 तारीख को विदर्भ के 5 जिलों नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर में मतदान होगा। सीकर लोकसभा सीट राजस्थान की उन 12 सीटों में से एक है जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। एक रिपोर्ट।
सीकर संसदीय सीट कुल 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। इनमें लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना तथा दूधू विधानसभा शामिल हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 22,32,000 से ज्यादा मतदाता हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले यहां करीब 1,90,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार यहां 64.76% मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहां किसान, जवान और नहरी पानी मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। इस सीट पर भाजपा, माकपा, बसपा तथा अन्य पार्टियों समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर माकपा से गठबंधन किया है और अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। भाजपा ने 2 बार चुनाव जीत चुके सुमेधानंद सरस्वती पर 3री बार भरोसा जताया है। माकपा की ओर से अमर राम चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अमर चंद चुनाव मैदान में हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दशकों से खड़े हो रहे उम्मीदवारों के बारे में कई रोचक दास्तानें हैं। ऐसे ही कुछ प्रसंगों पर एक नजर।
तमिलनाडु के पद्मराजन खुद को चुनावी राजा कहते हैं। वे मतदाताओं से साफ साफ कहते हैं कि उन्हें वोट न दें। सबसे नाकाम प्रत्याशी के रूप में उनका नाम निमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। सबसे अधिक बार चुनाव लड़ने के लिए वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम शामिल करा चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में परमानंद तोला अपने पिता की ही तरह 3 दशक से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे प्रॉपर्टी डीलर हैं और अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं कि कभी न कभी उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव जरूर जीतेगा। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना के पहले दिन कल एक उम्मीदवार ने पर्चा भरा। इस सीट पर अगले महीने की 7 तारीख को 3रे चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकेंगे और पर्चों की जांच 20 अप्रैल को होगी। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में बूथ लेवल अधिकारियों को सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची मतदान की तारीख से कम 5 दिन पहले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करना है। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र का पता लगाने और अपने क्रमांक को जानने में मदद मिलेगी और मतदाता पहचान पत्र गुम हो जाने की स्थिति में भी वे वोट डालने जा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी। मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस एक मार्च करेगी। वहीं संवेदनशील इलाकों में नाके पर गश्त और जांच बढ़ा दी जाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत को टक्कर देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैना ओडिशा के बालासोर से प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने गुजरात में विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी अपने 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्य समारोह संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में देशवासियों से डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और उनके कार्यों को अपनाने की अपील की ताकि देश का समावेशी विकास हो सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री आम्बेडकर के आदर्शों को अपनाने और न्यायपूर्ण तथा समानतापूर्ण समाज के प्रति बाबा साहेब की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि देश के विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। पूरे इसराइल में आज सुबह हवाई सायरन गूंजते रहे। यह पहली बार है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया है। इसराइल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने जो भी ड्रोन और क्रूज तथा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी उनमें से अधिकतर को इसराइल की सीमा से बाहर ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच इसराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। दूतावास ने कहा है कि वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों तथा नागरिकों के संपर्क में है। इसराइल ने सभी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद इसराइल के रक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत इसराइल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। भारत ने दोनों देशों से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान के पोखरण में कल यह परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का दिन और रात कभी भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें आधुनिक युद्ध टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए संगठन और भारतीय सेना की प्रशंसा की है। उन्होंने इस मिसाइल को उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से गोवा में शौर्य और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगे। इसका आयोजन नौसेना केंद्र आईएनएस हंस में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैप्टन रवि भी मेमोरियल स्वर्ण पदक और शस्त्र संवर्धन तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान के लिए लेफ्टिनेंट वीके जैन मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच कोलकाता में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया था। मलयाली नववर्ष विशु का त्यौहार आज केरल सहित दुनियाभर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार वर्ष के दौरान अच्छी फसल होने की कामना से मनाया जाता है। बांग्लादेश में पोइला बैशाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पोइला बैशाख बांग्ला भाषी लोगों की समावेशी और उत्सवधर्मी संस्कृति का प्रतीक है। इस अवसर पर बांग्लादेश में सभी धर्मों और समुदायों के लोग आयोजनों में शामिल हुए। ढाका विश्वविद्यालय में आज मंगल शोभा यात्रा निकाली गई। बांग्लादेश के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को मंगल शोभा यात्रा निकालने के निर्देश दिए थे। मौसम विभाग ने कल तक देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर कल तक धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली में कल तक बादल छाये रहेंगे और हल्की वर्षा के साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। समान नागरिक संहिता, एक राष्ट्र एक चुनाव, एकल मतदाता सूची और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन का वादा किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से और मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।